मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत हम लोग कल के ही विषय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर वक्त बच पाया तो विस्तार से, अदरवाइज सामान्य तौर पर ही। और वो थी कृषि कानूनों की वापसी, जैसे समाचारों की या घटनाओं की तैयारी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप कैसे करेंगे। लेकिन आइए पहले कुछ जो दूसरे समाचार हैं उन्हें देख लेते हैं। रेडियो न्यूज़ में आपने एक खबर सुनी होगी, अखबारों में शायद इसे जगह नहीं भी मिली है, लेकिन रेडियो न्यूज़ में है। और जब मैं रेडियो न्यूज़ कहता हूँ ना, तो उसका मतलब है कि ऑफिशियल न्यूज़ का मतलब है कि केंद्र सरकार के माध्यम से हमें जो न्यूज़ मिल रही है, ठीक है। उसमें एक न्यूज़ थी और न्यूज़ ये थी कि मणिपुर का एक जिला है तामेंगलोंग, तामेंगलोंग शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि मणिपुर राज्य, वहां एक जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन, यानी उद्घाटन ही कहना चाहिए, नींव रखी गई है, आधारशिला रखी गई है। और वह जनजातीय संग्रहालय स्वतंत्रता सेनानी गाय दिन ल्यू के नाम पर है। ये महिला थी, स्वतंत्रता सेनानी, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी थी गाय दिन ल्यू। इसका मतलब है कि आपको यहां जानना चाहिए कि जो गाय दिन ल्यू हैं स्वतंत्रता सेनानी, ये कहां की थी, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने के बाद डेफिनेटली इस टॉपिक का महत्व बढ़ा है, और वैसे पहले भी बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि भारत जैसे देश में हम जनजातियों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हर दृष्टि से, चाहे वो आर्थिक दृष्टि हो, सामाजिक दृष्टि हो, सांस्कृतिक दृष्टि हो, स्वतंत्रता आंदोलन हो, नकार नहीं सकते। अगर हम इसे नकारते हैं तो हम अपनी परंपरा की जो सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है उसे नकारते हैं। तो डेफिनेटली अब यह जो टॉपिक है महत्वपूर्ण हो गया है, पहले भी महत्वपूर्ण था लेकिन परीक्षा की दृष्टि से शायद उतना नहीं था, लेकिन चूंकि अब लगातार ये करंट अफेयर्स में इससे जुड़ी हुई बातें आपको पढ़ने और सुनने को मिलेंगी, इसलिए मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा अब इस पर आप विशेष ध्यान दें। एक और खबर जो अखबारों में आई है, सभी अखबारों में नहीं है, किसी किसी अखबार में, किसी में थोड़े विस्तार के साथ है, किसी में बहुत ही छोटे में है, किसी में है ही नहीं, वो अल साल्वाडोर को लेकर के है। अल साल्वाडोर, ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका एक छोटा सा देश है, आबादी लगभग 65 लाख के आसपास है और बहुत ही गरीब देश है। इसके बारे में न्यूज ये आई है कि आप देख रहे हैं कि अभी बिटकॉइन की चर्चा कितनी चलने लगी है, क्रिप्टो करेंसी की कहना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी की खूब बातें होने लगी हैं। मैंने शुरुआत इसकी की थी, आपको बताया था कि अब समय आ गया है जबकि आपको इसके बारे में जानना चाहिए, मैंने कुछ बातें बताई भी। और उसके बाद देखिए कैसे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, अखबारों में भी अब एडिटोरियल आर्टिकल्स, कमेंट, सारे कुछ बातें आने लगी हैं। तो सिविल सर्विस के लिए आपको इसी तरह से टॉपिक को पकड़ना पड़ता है। अब ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा अनुभव चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टूडेंट इसे न पकड़ पाए, अपने काम चलाने लायक तो वो कर ही लेते हैं। तो जो अल साल्वाडोर है, इसकी सबसे बड़ी खासियत इस बात की, जिसकी वजह से इसकी चर्चा हुई, कि यह पहली बात तो यह कि बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला देश था, पहला देश है। दूसरा यह है कि अब यह दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनने जा रहा है, बिटकॉइन सिटी, और यहां बकायदे बिटकॉइन द्वारा समर्थित यानी कि सपोर्टेड $1 अरब के बॉन्ड जारी करने की योजना है। $1 अरब के बॉन्ड ये जारी करेगा। जब आप क्रिप्टो करेंसी तैयार करते हैं, और बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, तो उसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक की, बिजली की जरूरत पड़ती है। तो यहां खासियत इस बात की है कि इसके लिए जो बिजली लगेगी, उस बिजली की जो सप्लाई है वो ज्वालामुखी से की जाएगी। ये भी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो दोस्तों, अल साल्वाडोर के बारे में बस इतनी थोड़ी सी बातें आप अपने दिमाग में दर्ज कर लीजिए, इतना ही सफिशियंट होगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपके दिमाग में दर्ज है ना, तो आप डेफिनेटली उस पर निशान लगा देंगे जो सही होगा। एक खबर आज आपको अखबारों में पढ़ने को मिली होगी और प्रोमिनेंटली मिल रही है, और वो है कि शेयर बाजार में बहुत तेजी से गिरावट आई कल के शेयर बाजार में। उसके दो मुख्य कारण रहे, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वह है केंद्र सरकार ने जो अभी कृषि कानून वापस लिए हैं। एक और भी कारण है जिसकी चर्चा मैंने उस समय नहीं की थी, वो जो खासकर पेटीएम का, जो अभी आपने देखा कि पब्लिक ऑफर आया था, जैसे ही वो मार्केट में लिस्टेड हुआ वो शेयर बहुत ज्यादा उसमें गिरावट आ गई, लगभग 27% की गिरावट आ गई। इसके बाद फिर से उसमें गिरावट आती चली गई। तो जब शेयर मार्केट में पेटीएम जैसी कंपनी के शेयर्स में गिरावट आ रही, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था कमजोर तो नहीं हो रही, इसका अनुमान लगाया जाता है। तो एक तो पेटीएम का कारण था, लेकिन चलिए वो इतना बड़ा कारण, लेकिन कृषि कानून के वापसी के बाद एक दिन में 1170 अंक सूचकांक, जो 30 शेयरों वाला है, वो गिर गया। अब आपको थोड़ा सा समझना इस बात को है कि भाई कृषि कानूनों की वापसी हुई है तो ये शेयर मार्केट क्यों गिर गया। ऑनलाइन स्टूडेंट को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि शेयर मार्केट के बारे में बहुत विस्तार के साथ, बहुत और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आप उस लेक्चर को सुने, आप अपने सिस्टम के तहत अपनी तैयारी करते रहें। दरअसल होता यह है कि जो शेयर मार्केट है, होता तो वर्तमान में है, लेकिन उसकी दृष्टि भविष्य पर रहती है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद आपने अखबारों में पढ़ा है कि सामान्यतया ये कहा जाने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हमारे यहां जो सुधारवादी कदम उठाए जाने चाहिए या लिबरल जो पॉलिसीज होती हैं उनकी रफ्तार थम जाएगी या बिल्कुल आप यूं कह लीजिए कि धीमी पड़ जाएगी, क्या होगा? क्योंकि जो कृषि कानून थे उन्हें एक प्रकार से जो मॉडर्न हमारी एग्रीकल्चर के रिक्वायरमेंट है उस दृष्टि से जरूरी माना जा रहा था, जो कृषि को लेकर के जो पूरा का पूरा वैश्विक परिदृश्य जो निर्मित हो रहा है या कह लीजिए जो वर्ल्ड मार्केट तैयार हो रहा है उस दृष्टि से जरूरी माना जा रहा था। केंद्र सरकार ये तीन कानून लेकर के आई और उसके खिलाफ आंदोलन हुए और आप देख रहे हैं कि उस आंदोलन के फलस्वरूप सरकार ने शुक्रवार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। अब कैबिनेट में मामला जाएगा, फिर पार्लियामेंट में जाएगा और डेफिनेटली अब वापस हो जाएगी। इसे आप 1990 के स्थिति से जोड़ करके देखिए, क्योंकि 1990 के आसपास जो शेयर मार्केट में बहुत तेजी आनी शुरू हुई थी तो उसका कारण यही था कि लोगों को लगने लगा था कि अब बहुत ही ज्यादा लिबरल पॉलिसीज आएंगी। लिबरल पॉलिसी का मतलब यह है कि सरकार आर्थिक गतिविधियों के मामले में उदार हो जाएगी और ये सारी चीजें प्राइवेट लोगों के हाथ में देना शुरू करेगी। जैसे आप देखिए कि जब एयर इंडिया की नीलामी हो गई तो थोड़ी सी मार्केट में तेजी आई और लोगों में बड़ा उत्साह हुआ कि यार सरकार ने एयर इंडिया बेच दिया, इसका मतलब है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देगी, उदारवादी नीतियां लेकर के आएगी, इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है, खासकर कृषि कानूनों की वापसी के बाद, कि नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा। सरकार इस मायने में कंजर्वेटिव हो सकती है, स्लो कर सकती है अपनी स्पीड को, और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर विपरीत प्रभाव पड़ा तो सीधी सी बात है कि जो कंपनीज हैं उन कंपनीज के प्रॉफिट कम होंगे, और अगर कंपनीज के प्रॉफिट्स कम होंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनके शेयरों की कीमतें भी कम होंगी। मैंने आपको बस थोड़े से संकेत के तौर पर कुछ बातें बताई हैं। अगर आपने इस टॉपिक पर लेक्चर सुन लिए हो या आपका यह टॉपिक तैयार हो तो बेहतर होगा कि मेरी बातों पर आप 10-15 मिनट लगाकर और विचार करें, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा। और वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसके बारे में जानना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर के भी और सिविल सर्विस की तैयारी को लेकर भी। अब मैं आता हूं दोस्तों मुख्य विषय के बारे में। देखिए कि कृषि कानूनों की वापसी हो गई है लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुए हैं। जो आंदोलनकारी किसान हैं वो अभी और भी डिमांड रख रहे हैं। उन्होंने जितने भी डिमांड्स रखी हैं, है ना, छोटी छोटी और भी डिमांड्स हैं कि किसानों पर जो आरोप लगाए गए हैं या जो केसेस चल रहे हैं वापस लिए जाएं, जो विद्युत बिल लाया गया है उसे वापस लिया जाए, पराली पर जो जलाने पर जो दंड की व्यवस्था की गई है उसे खत्म किया जाए, इस तरह की और मांगे हैं, हम उस पर नहीं जाते। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमांड है, जो सरकार के लिए सच पूछिए तो संभव नहीं है, अव्यावहारिक मांग है, वो है MSP पर कानून बनाया जाए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसके लिए कानून बनाया जाए। कानून बनाए जाए कहने का मतलब है कि सरकार ये कानून पारित करे कि इस साल इस वस्तु की खरीदी, कृषि उत्पाद की खरीदी, इससे कम कीमत पर नहीं की जा सकेगी, जैसा कि अभी भी होता है। लेकिन अभी जो MSP है, देखिए उसका फॉर्मेट क्या है, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देती है और उस समर्थन मूल्य पर खुद खरीदना शुरू कर देती है, सरकार खरीदती है। लेकिन हमारे यहां जितना उत्पादन हो रहा है, सरकार आप यूं कह लीजिए कि बिल्कुल आइसबर्ग का हिस्सा ही खरीद पाती है, उत्पादन बहुत ज्यादा है, सरकार उतना नहीं खरीद पाती। सरकार क्यों नहीं खरीद पाती कि वो खरीद करके क्या करेगी भाई, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो अनाज चाहिए, जो बफर स्टॉक चाहिए, उसके लिए वो खरीद लेती है, बाकी वो मार्केट के भरोसे छोड़ देती है। लेकिन ये जो एमएसपी है अभी, उसी कीमत पर या उससे अधिक कीमत पर तो भले ही किसान जो किसानों का जो अनाज है वो व्यापारी खरीद लें, लेकिन अभी व्यापारियों के लिए बाध्यता नहीं है कि वो उससे कम की कीमत पर नहीं खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1500 रुपए क्विंटल धान है एमएसपी, तो सरकार खरीदेगी, लेकिन व्यापारियों के लिए बाध्यता नहीं है कि वो 1500 से कम में नहीं खरीद सकते, वो 1400 में खरीदेंगे, 1300 में खरीदेंगे, जो भी उनको ठीक लगेगा खरीदेंगे। किसानों का कहना है कि नहीं, अब आप ये कानून बनाइए कि जो आपने एमएसपी फिक्स कर दिया है, यानी कि 1500 रुपए यदि फिक्स कर दिया है, तो कोई भी व्यापारी इससे कम कीमत पर उसकी खरीदी नहीं करेगा। ये उनकी डिमांड है और इस डिमांड पर वो अड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार के लिए इस मांग को पूरा कर पाना संभव है, यानी कि क्या वह यह कानून बना सकती है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके पास इसकी तैयारी होनी चाहिए। मुझे ध्यान आ रहा है कि जब इस ये मांग अभी की नहीं है, बल्कि किसानों ने जब आंदोलन की शुरुआत की थी तब भी वो लगातार ये मांग अपनी रख रहे थे। और मैं जो आपको वीकली क्वेश्चन देता हूँ एक आंसर लिखने के लिए, मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद इस पर मैंने प्रश्न दिया था कि क्या एमएसपी पर कानून बनाया जाना संभव है, इस तरह की बात मैंने उस समय भी कही थी। और डेफिनेटली अब जबकि कानून वापस लिए जा रहे हैं, इसके बावजूद आंदोलन इस मांग के कारण खत्म नहीं हो रहा है, तो ये जो टॉपिक है पहले की तुलना में भी और इम्पॉर्टेंट हो गया है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप अच्छी तैयारी करें, अच्छे पॉइंट्स नोट करें। आज अब समय नहीं है, लेकिन संभव हुआ तो मैं इस पर कल कुछ बातें करूंगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होंगी। इसके लिए सावित्री भारद्वाज, जो अछौली गांव से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ की हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो सावित्री, आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: पवन उत्तराखंड से, रिंकल जाडा, नीतीश कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय से, पूजा सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से, आरती सिंह इलायची विश्नोई बीकानेर राजस्थान से, और अभिषेक ठाकुर बीना मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।